पृष्ठ संख्या 158 अध्याय 9। अध्याय का शीर्षक है ईश्वर प्रत्यय या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ईश्वर एवं जगत, गॉड एंड वर्ल्ड, ईश्वर एवं मनुष्य या गॉड एंड मैन, ईश्वर तथा निरपेक्ष या गॉड एंड एब्सोल्यूट। इसमें शीर्षक है ईश्वर और जगत का संबंध। ईश्वर और जगत का संबंध इस प्रश्न से जुड़ा है, क्या ईश्वर जगत में व्याप्त है अथवा जगत से परे है। एकेश्वरवादी मतों में इस प्रश्न का विशद रूप से विचार किया गया है। पृष्ठ संख्या 162 से 180 तक में देववाद ईश्वर को विश्वातीत मानता है और सर्वेश्वरवाद ईश्वर को विश्व में व्याप्त मानता है। इसी प्रकार पुरुषोत्तमवाद तथा ईश्वरवाद ईश्वर को विश्वव्यापी तथा विश्वातीत दोनों मानते हैं। अब यहाँ इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि धर्म की दृष्टि से ईश्वर का विश्वव्यापी होना अधिक उपयुक्त है या विश्वातीत होना। वैसे ईश्वर स्वतः अपने आप को जगत में, जीवात्माओं में शांत रूप में अव्यक्त करता है। इस प्रकार ईश्वरीय आत्मा जीवात्माओं में व्याप्त तत्व के रूप में है। श्री अरविंद के शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमात्मा जीवात्माओं का आभ्यांतरिक पथ प्रदर्शक है। भगवान का पथ निर्देश निश्चित रूप में मिलता है और इस संसार में व्यर्थ वस्तुतः कुछ भी नहीं है। परंतु अब प्रश्न यह है कि यदि ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त है तो जीवात्माओं की स्वतंत्र संकल्प शक्ति का क्या होगा? मनुष्य के व्यक्तित्व की रक्षा कैसे होगी? इसलिए मानव स्वातंत्र और व्यक्तित्व की रक्षा के लिए ईश्वर को पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं मान सकते। इस प्रकार ईश्वर जीवात्माओं से भी परे है और मनुष्य को अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए सापेक्षिक स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। धर्म की दृष्टि से यह अनिवार्य भी है कि उपासक और उपास्य में दूरी होनी चाहिए। ईश्वर को विश्व में पूर्णतया व्याप्त मान लेते हैं तो कौन किसकी उपासना करेगा तथा कर्मों का उत्तरदायित्व किस पर होगा? अतः धर्म की दृष्टि से ईश्वर को विश्वव्यापी तथा विश्वातीत दोनों मानना पड़ता है। अब शीर्षक है ईश्वर का मानवीय व्यक्तित्व से संबंध। इसके अंतर्गत शीर्षक है ईश्वर और मनुष्य का संबंध। यद्यपि ईश्वर संबंधी विभिन्न मतों में ईश्वर और जगत के संबंध के साथ ही साथ ईश्वर और मानव के संबंध पर भी विचार किया गया है। पृष्ठ संख्या 162 से 180 में। परंतु यहाँ मानवीय व्यक्तित्व के साथ ईश्वर के संबंध की चर्चा अपेक्षित है। मानवीय व्यक्तित्व के तीन प्रमुख पहलू परिलक्षित होते हैं, शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक। वैसे तो मनुष्य शांत जीवात्मा है जो शरीर आकार में आबद्ध है। पृष्ठ संख्या 159। शांत जीवात्मा होते हुए भी मनुष्य चेतन है और यह चेतनता उसकी बौद्धिकता और नैतिकता के द्वारा प्रकट होती है। यह भी सत्य है कि जगत में मनुष्य उच्च कोटि का चेतन और बौद्धिक प्राणी है। इसी में जगत के अन्य चेतन जीवों से वह नितांत रूप से भिन्न है। संभवतः अपनी बौद्धिक चेतना के कारण ही उसने ईश्वर का मानवीकरण किया है। उसकी आत्म चेतना और आत्म संयम से ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका जगत में स्वतंत्र अस्तित्व है। उसमें संकल्प स्वतंत्र है। उसके शांत आत्म तत्व और चेतन से ही एक परमात्म तत्व की भी सिद्धि होती है। यही कारण है कि मानव ने अपने ही समान परंतु गुणों के परिमाण में अंतर के साथ एक असीम अनंत सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञानी शक्ति की कल्पना की है। दूसरे शब्दों में मनुष्य ने ईश्वर का मानवीकरण किया है। अपने ही विचार भावना संकल्प उद्देश्य और प्रेम आदि के संबंधों को ईश्वर पर आरोपित किया है। यद्यपि कुछ आलोचकों ने इस संबंध में आक्षेप किया है और बताया है कि मनुष्य द्वारा ईश्वर का मानवीकरण करना उचित नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार ईश्वरीय मानस उन सभी मानसों से जिनसे हम अब तक परिचित हैं नितांत रूप से भिन्न होना चाहिए। सारांश यह है कि ईश्वर का मानवीकरण नहीं किया जा सकता। इस आक्षेप का उत्तर देते हुए स्टेस ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य ईश्वर का मानवीकरण किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मानव मानस में जो धारणाएं हैं उनके अतिरिक्त उसके पास कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिसके द्वारा वह ईश्वर के प्रति अपनी धारणा व्यक्त कर सके। सारांशतः ईश्वर का मानवीकरण करना अनिवार्य है। यदि यह सत्य है कि ईश्वर का मानवीकरण होता है तो मनुष्य ईश्वर को अपनी आत्म चेतना और बौद्धिकता से अपने ही समान पाता है। अंतर केवल मात्र का है। अतः ईश्वर यदि अनंत है तो मनुष्य शांत है। ईश्वर सार्वभौमिक है तो मनुष्य विशिष्ट है। ईश्वर अनंत स्रोत सृष्टिकर्ता तथा जगत को धारण करने वाला है। ईश्वर कारण है और मनुष्य कार्य है। ईश्वर अनंत सत्ता होने के कारण जगत को अपना साधन बनाता है जिसके माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति करता है। मानव भी ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। इस नाते मानव का ईश्वर से अटूट संबंध है। इस संबंध को हम मानव व्यक्तित्व के तीन पहलुओं के साथ देख सकते हैं। इसमें पहला बिंदु अ है, ईश्वर का मनुष्य के शारीरिक व्यक्ति से संबंध। जगत की अन्य भौतिक वस्तुओं की भांति मनुष्य का शरीर भी अनंत आत्म तत्व के लिए साधन स्वरूप है। मानव शरीर का विकास ईश्वर इस रूप में करता है कि उसमें स्वतः उत्पादन की क्षमता आ जाती है तथा मनुष्य के शरीर की सभी अनैच्छिक एवं स्वचालित क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर मनुष्य में अनंत आत्म तत्व को प्रकट होने के लिए साधन के रूप में है। शरीर ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शांत आत्म तत्व को अनंत आत्म तत्व में विलीन कर एकाकारता का अनुभव करता है। सारांश यह है कि मनुष्य का भौतिक शरीर स्वयं में साध्य नहीं वरन साधन मात्र है। अब अगला शीर्षक है बिंदु ब, मनुष्य के बौद्धिक पहलू से ईश्वर का संबंध। बौद्धिक दृष्टि से मनुष्य आत्मचेतन और आत्मसंयमित दृष्टिगत होता है। इस दृष्टि से लगता है कि मनुष्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, वह आत्मनिर्णय और निश्चय करता है, संकल्प के अनुसार क्रियाएं करता है तथा उत्तरदायित्व का वहन करता है। दूसरी ओर यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य का आत्मचेतन विचार से भिन्न नहीं है। ईश्वर परम चैतन्य है और मनुष्य शांत होने के कारण उस परम और अनंत चेतन सत्ता का ही भाग है। मानवीय बौद्धिक चिंतन और अनुभव उस चरम अनुभव का ही अंग प्रतीत होता है। मानवीय मानस उसी परम मानस का ही एक भाग है। वह अनंत मानस शांत मानस को समेट लेता है और इसके परे भी चला जाता है। पृष्ठ संख्या 160 बिंदु स है, मानव के नैतिक पहलू से ईश्वर का संबंध। बौद्धिक दृष्टि से जब मनुष्य आत्मचेतन है तो यह भी सिद्ध होता है कि उसको अपने अस्तित्व का ज्ञान है। वह अपने विषय में, अपने हित अनहित के विषय में निर्णय ले सकता है, आत्मसंयम और आत्मचिंतन कर सकता है। वह अपनी कृति और संकल्प शक्ति में स्वतंत्र है। वह अपने से भाग्य का निर्माण कर सकता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि क्या मानव की स्वतंत्रता ईश्वरीय स्वतंत्रता का एक भाग है, या क्या ईश्वर मानवीय कार्यों में व्याप्त रहता है। इसके विषय में विभिन्न ईश्वरवादी मतों के विभिन्न उत्तर हैं। जैसे देववाद के अनुसार मानव अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है, उसमें संकल्प स्वतंत्र है। इसी प्रकार ईश्वरवाद भी मानवीय स्वतंत्रता का पोषण करता है, परंतु कुछ ईश्वरवादी जैसे मार्टिन्यू यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के कार्यों की संभावनाओं का निर्धारण ईश्वर करता है। यदि ईश्वर अनंत है और जीवात्मा या मनुष्य शांत है तो ईश्वर से मानव का अलग होना संभव नहीं प्रतीत होता है। अतः यह मानना होगा कि ईश्वर आत्माओं से परे भी है और उसमें व्याप्त भी। ईश्वर परम आदर्श भी है। इस प्रकार मनुष्य के नैतिक आदर्शों में ईश्वर व्याप्त भी है। मानव शक्ति में ईश्वरीय संकल्प शक्ति सक्रिय है। ईश्वर परे भी है और मानव के नैतिक आदर्श की पूर्ति के लिए जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है स्वतंत्रता भी रहती है। सारांश यह है कि पहला, मनुष्य स्वतंत्र आत्मचेतन एवं आत्मनियंत्रित है। वह ईश्वर की आत्मनियंत्रक शक्ति में भागीदार भी है। दूसरा, इसके साथ ही मनुष्य शांत और सापेक्ष आत्म तत्व भी है। उसकी स्वतंत्रता अनंत नहीं शांत है। इस अर्थ में वह ईश्वरीय इच्छा के अंतर्गत ही स्वतंत्रता पूर्वक वैसे ही कार्य करता है। जिस प्रकार एक गाय रस्सी से बंधी हुई है, परंतु जितनी दूर तक रस्सी है उतनी दूर तक वह स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घूम सकती है, अतः मनुष्य को ईश्वर ने सीमित रूप में स्वतंत्रता प्रदान की है। मनुष्य का नैतिक कार्य सार्वभौमिक आदर्श में समाहित है। विलियम टेम्पल ने अपनी कृति नेचर मैन एंड गॉड में ठीक ही लिखा है कि ईश्वरीय अनुकंपा की अनुभूति वाला यही जानता है कि मनुष्य ईश्वर के हाथों में उसी प्रकार है जिस प्रकार कुम्हार के हाथों में मिट्टी। ईश्वर रूपी कुम्हार ही हमारे कल्याण को जानता है। अगला शीर्षक है ईश्वर विषयक प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। हमने देखा है कि ईश्वर का मानवीकरण मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। ईश्वर विषयक प्रत्यय अनिश्वरवादी के लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता, परंतु ईश्वरवादी ईश्वर शब्द का प्रयोग अधिकांश रूप में मनुष्य के अर्थ में ही करता है। हमने यह भी देखा है कि मनुष्य और ईश्वर के रूप और गुणों में मात्रा का ही अंतर है। जैसे मनुष्य भौतिक अभौतिक दोनों सत्ता का योग है, परंतु मनुष्य ईश्वर का प्रत्यय अभौतिक रूप में मानता है। वह अति चैतन्य है तथा सब कुछ उत्पन्न करने की उसमें अपार शक्ति है, जबकि मनुष्य उतना शक्तिशाली नहीं है। वह परम शक्ति है, इसलिए सबके भाग्य पर नियंत्रण भी रखता है। वह जगत का सृष्टा, नैतिक नियमों का स्रोत, न्यायी तथा जगत की भलाई करने वाला पालक और संरक्षक है। मनुष्य का विश्वास है कि ईश्वर जगत में सर्वत्र व्यापक सत्ता के रूप में व्याप्त है। संक्षेप में ईश्वर विषयक प्रत्यय निम्नलिखित रूपों में बताए जा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 161, इसमें पहला बिंदु है आदि कारण का प्रत्यय। ईश्वर के विषय में मनुष्य का एक प्रत्यय यह है कि वह जगत का आदि कारण है, अर्थात ईश्वर जगत की सभी वस्तुओं का कारण है, जगत उसका कार्य है। ईश्वर का कोई कारण नहीं है, वह स्वयंभू है, वह कारणहीन है। इस प्रत्यय का आधार यह है कि जगत की सभी वस्तुएं शांत सकारण एवं सापेक्ष है तथा क्रमशः उच्चतर कारणों पर आधारित है। इस प्रकार अनंत उच्चतर कारणों पर हम अनंत काल तक किसी वस्तु का उच्चतम कारण नहीं ढूंढ सकते। हमें कहीं न कहीं रुकना पड़ेगा और आदि कारण को मानना पड़ेगा। वही आदि कारण स्वयंभू या ईश्वर है। अब दूसरा बिंदु है निरपेक्ष तथा निरुपाधि सत्ता का प्रत्यय। आदि कारण के प्रत्यय के साथ ईश्वर विषयक यह प्रत्यय भी मिला जुला है। मनुष्य ईश्वर को चरम सत्ता मानता है जो निरपेक्ष और निरुपाधि है, अर्थात वह सत्ता अपने में पूर्ण और आत्मस्थित है। उसे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वह अपने से परे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता। और न इसका कोई कारण ही है। वह इतना सक्षम और आत्मपर्याप्त है कि उसके भीतर ही सभी संभावनाएं और दशाएं अवस्थित हैं। वह किसी वस्तु से बाधित नहीं है, उसके लिए कोई शर्त नहीं है, इसलिए वह चरम निरुपाधि सत्ता है। कारणहीन होने के कारण ही वह निरपेक्ष और निरुपाधि चरम सत्ता है। बिंदु तीसरा है परम प्रज्ञा या रीजन का प्रत्यय। संपूर्ण विश्व में एक व्यवस्था, एकता और क्रमबद्धता दृष्टिगोचर होती है। इससे किसी प्रयोजन, योजना तथा बुद्धि का अस्तित्व सिद्ध होता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यह जगत ऐसी शक्ति की उपज है जो अपने में पूर्ण और पर्याप्त है तथा अपने भीतर से ही जगत को प्रसूत करती है, विकसित करती है और संपूर्ण जगत का आधार स्वरूप है। सारांश में ईश्वर ही परम प्रज्ञा या परम बुद्धि के रूप में वह शक्ति है जो संपूर्ण जगत के संचालन और संयोजन का काम करती है। अब बिंदु चौथा है आदर्शों के स्रोत का प्रत्यय। पैट्रिक ने ईश्वर विषयक प्रत्यय के संबंध में ठीक ही लिखा है कि ईश्वर महान संचालक और संयोजक केवल इस अर्थ में ही नहीं है कि वह जगत को अपनी पूर्णता तथा शक्ति पर्याप्तता के आधार पर उत्पन्न करता है, वरन जगत का सृष्टा इसलिए है कि वह समन्वय कारक, क्रियात्मक एवं पूर्णता प्रदान करने वाली शक्ति है जो पूर्णता, सुंदरता, सच्चाई, भलाई, प्रेम और सहयोग की ओर अग्रसर करती है। पैट्रिक के इस कथन का यही अर्थ है कि ईश्वर ही सत्यम, शिवम, सुंदरम आदि परम आदर्शों का मूल आधार और उद्गम स्रोत है। मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त आदर्श को यूं ही छोड़ नहीं दिया जाता, उन पर मानव चलता है, उन आदर्शों की पूर्णता की प्राप्ति भी करना चाहता है। आधुनिक युग में तो ईश्वर के स्थान पर मानवतावाद जैसे मत आदर्शों को ही प्रतिष्ठित करते हैं, परंतु विवशता यह है कि ये आदर्श चाहे आंशिक रूप में ही किसी मनुष्य में यदि दृष्टिगत होते हैं तो वह उसी को देव तुल्य या ईश्वर तुल्य मानने लगते हैं। प्रश्न है कि इन आदर्शों का स्रोत क्या है? क्या इन आदर्शों का निर्माण मनुष्य स्वयं करता है या ये आदर्श सर्वदा से पाए जाने वाले नमूने के रूप में होते हैं? इसका उत्तर इतिहास में मिल सकता है कि मानव सर्वदा से निम्न से उच्च और उच्चतर आदर्शों की खोज में है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में हम पहले से बहुत प्रगत कर चुके हैं, फिर भी आदर्शों के अर्थ में पीछे हैं। वर्तमान संस्कृति में व्याप्त संक्षोभ का एक यह भी कारण है। ये आदर्श प्राप्तव्य तो हैं ही, प्रेरक पूर्ण शक्ति भी हैं। मानव जीवन के संपूर्ण आदर्श एक परम आदर्श ईश्वर से ही प्रसूत हैं। ईश्वर ही इन आदर्शों का स्रोत है। पृष्ठ संख्या 162। बिंदु पांचवा है परम आत्मा का प्रत्यय। ईश्वर विषयक प्रत्यय परम आत्मा के रूप में भी जगत का कर्ता है। संपूर्ण जगत को अपने भीतर से ही विकसित करता है। यह जगत चेतना की वस्तु के रूप में है। ईश्वर परम आत्मा चेतना और अनंत शक्ति है। जगत की सभी शांत वस्तुएं उसी से उत्पन्न हैं। वह परम आत्मा इनकी रक्षा तथा संयोजन तथा संगठन करता है। इन ससीम वस्तुओं से ही उस परम तथा अनंत सत्ता की सिद्धि होती है। वह आत्मा एक है, अद्वैत है, अनेक उसी के रूप हैं। जैसे अग्नि से स्फुलिंग या सरिता से बूंद भिन्न नहीं वरन उसी का एक रूप है, उसी प्रकार जगत की अनेकता उसी परमात्मा का रूप, अंश अथवा प्रतिबिंब है। भेद केवल असीमता और ससीमता में है। जगत की वस्तुएं ससीम हैं। वे देश, काल, नाम, रूप, गुण आदि की सीमाओं में बद्ध हैं, जबकि परम आत्मा असीम है, सीमातीत है। बिंदु छठवां है नैतिक शासक का प्रत्यय। विश्व के प्रमुख धर्मों में ईश्वर को नैतिक प्रशासक के रूप में भी माना गया है। मानव के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने वाला ईश्वर ही है। वह कर्म सिद्धांत तथा नैतिक व्यवस्था का व्यवस्थापक है। विश्व में अनैतिकता तथा अधर्म की वृद्धि पर ईश्वर को अवतार धारण करना और व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर नैतिक प्रशासक के रूप में भी है। बिंदु सातवां है अनंत तथा नित्य ईश्वर का प्रत्यय। विश्व की समस्त वस्तुएं ससीम और नाशवान हैं। ससीम इसलिए कि ये देश और काल तथा गति और बंधन की सीमा में हैं। ससीम वस्तुएं नित्य भी नहीं हो सकती। उनका विनाश कभी न कभी निश्चित है। इस शांत तथा नाशवान वस्तुओं के अस्तित्व से ही एक अनंत तथा नित्य सत्ता की कल्पना की गई है। ऐसी सत्ता जो देश कालातीत है, वह नित्य और बंधन से परे है। वह नित्य और अस्थाई है। सभी धर्मों में एक ऐसी सत्ता को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। वह नित्य और अनंत सत्ता ही शांत वस्तुओं और मनसों में अव्यक्त होती है। जगत और उसकी वस्तुएं उसी सत्ता के प्रतिबिंब स्वरूप हैं, प्रतीतियां हैं। ईश्वर इंद्रिया अतीत और अगोचर है, इसलिए भी उसे अनंत कहा जाता है। अगला शीर्षक है भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिकों द्वारा वर्णित ईश्वर विषयक प्रत्यय। इसमें पहला बिंदु है उपनिषदों में ईश्वर स्वरूप गुण तथा जगत से संबंध। उपनिषदों में जहाँ एक ओर निर्गुण ब्रह्म का वर्णन मिलता है, वहीं दूसरी ओर ब्रह्म के सगुण रूप की भी चर्चा की गई है। यह सगुण ब्रह्म ईश्वर ही है। वह ब्रह्म जो जगत से विशिष्ट है, वह ईश्वर ही है। इसी ब्रह्म को सप्रपंच ब्रह्म कहते हैं। यह जगत का सृष्टा, धारणकर्ता और संहारक भी है। छांदोग्यो उपनिषद पद संख्या 3.14.1 में आता है कि सर्वखल्विदं ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासित, अर्थात यह संपूर्ण जगत निश्चय ब्रह्म स्वरूप है, यह उसी से उत्पन्न होता है, उसी में लय होता है, उसी से संचालित होता है। ब्रह्म ही सबका इस है या ईश्वर है, वह स्वामी है, वह देवताओं का स्वामी है, वह परमेश्वर है, वही महान पुरुष है। ईश्वावास्योपनिषद में बताया गया है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ या चेतन है वह सब ईश्वर द्वारा आवृत आच्छादित है, उसी के अधिकार में है। ब्रह्म ही सारी सृष्टि का उद्गम, अंत और अंतर्यामी है, वह सर्वज्ञ तथा पूर्ण है। यह ब्रह्म सभी प्राणियों का स्वामी, उनका ईश्वर और सर्वभूत पालक है। यह जन्म न लेने वाला अन्न भक्षक तथा कर्म फल दाता है। पृष्ठ संख्या 163। ऐसे ब्रह्म को ईश्वर कहा गया है, वरन ईश्वरों के भी परम ईश्वर कहा गया है। यह देवताओं के परम देव, पतियों या पालक के भी परम पति, अव्यक्त से भी परे संपूर्ण लोक ब्रह्मांड के अधिपति, स्तुति करने योग्य वह परमात्म देव सबसे परे हैं। वह सारी सृष्टि का उद्गम है, अंत है, अंतर्यामी है। वह जीव आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। वह सर्वज्ञ है, वह पूर्ण है, वह सब का आश्रय और शरणदाता है। वह पुण्य पाप कर्मों के अनुसार फल देता है। वह उपासना के योग्य है। वह परम पुरुष सब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह आँख सिर और मुख वाला और सब जगह कानों वाला है। वही लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह सबका आश्रय है और सबका शरण है। उसके प्रसाद से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान या तप से उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। यह उपनिषदों का ईश्वरवाद है। ईश्वर जगत में व्याप्त है और उससे अतीत भी है। जगत में ईश्वर अवस्थित है, जगत ईश्वर नहीं है और न ईश्वर जगत है। यह ईश्वर मध्य विश्ववाद या पैनेंथिज्म है। ईश्वर सारे विश्व में व्याप्त है, वह जीवात्मा में भी व्याप्त है। वह पुण्य आत्माओं को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार उनको ऊर्ध्व गति देता है। वह पाप आत्माओं को असत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और उसका पतन करता है। जीव आत्मा की इच्छा स्वतंत्र नहीं है। ईश्वर सर्वकर्मा सर्व कार्य है। यह विश्वेश्वरवाद या सर्वेश्वरवाद है। अगला शीर्षक है गीता का ईश्वर स्वरूप, गुण तथा जगत से संबंध। गीता में ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है, ईश्वर सर्वोच्च सत्ता है। ईश्वर अनंत, शाश्वत और कुटस्थ है। ईश्वर आनंद का स्रोत है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर अंतर्यामी है। और बहिर्यामी भी है, अर्थात ईश्वर अंतर्यामी रूप में जगत में समाया हुआ है। जगत में जीव उसी का सनातन अंश है और उसी से यह उत्पन्न हुआ है। इस संपूर्ण जगत का आधार ईश्वर है, ईश्वर ही जगत को धारण किए हुए हैं। ईश्वर का एक पर रूप भी है, यह बहिर्यामी रूप है। ईश्वर भेद रहित तथा निर्गुण ब्रह्म रूप भी है, उसका यही रूप पर रूप है, यही अपरा प्रकृति का आधार है। इस अर्थ में ईश्वर परम तत्व कहा गया है। अगला बिंदु है, गीता का ईश्वर पुरुषोत्तम है। गीता का ईश्वर पुरुषोत्तम रूप अवतार ग्रहण करता है। अवतार के पीछे उद्देश्य यह है कि जब जब धर्म की ग्लानि एवं अधर्म का उत्थान होता है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है और ईश्वर जगत में अनीति तथा अधर्म को दूर करता है। गीता का ईश्वर अजन्मा, अविनाशी एवं भूतों का ईश्वर होते हुए भी अपनी ही प्रकृति में अधिष्ठित होकर अपनी माया से जन्म लेता है। पुरुषोत्तम रूप में ईश्वर अवतार लेकर लीला करते हैं। ईश्वर संपूर्ण संसार का स्वामी है। डॉक्टर दास गुप्त ने कहा है कि गीता का ईश्वर कोई दर्शन शास्त्र का अव्यक्त परम ब्रह्म नहीं है, परंतु वह मनुष्य जो ईश्वर बन सकता है तथा उसके हर प्रकार के संबंध मनुष्य से हो सकते हैं। पृष्ठ संख्या 164। प्रोफेसर दास गुप्त ने ठीक ही कहा है कि गीता के मत में सर्वेश्वरवाद, ईश्वरवाद तथा देवतत्वाद एक ही युक्ति संगत दार्शनिक सिद्धांत में संयुक्त किए जा सकते हैं। गीता केवल इसी बात पर जोर नहीं देती कि संपूर्ण जगत ईश्वर ही है, अपितु वह बार बार दोहराती है कि ईश्वर जगत से परे है और साथ ही साथ जगत में व्याप्त भी है। ईश्वर के स्वरूप के बारे में प्रचलित विभिन्न मतों का उत्तर जो गीता में निहित है वह यह है कि ईश्वर के पुरुषोत्तम स्वरूप का विशेषक अपनी पूर्णता में विश्वातीतवाद, अभौतिकवाद, सर्वेश्वरवाद जैसे अपने पृथक और विरोधी लक्षणों को अपने में विलीन कर लेता है। गीता सर्वेश्वरवादी एवं ईश्वरवादी दोनों विचार प्रस्तुत करती है। अगला बिंदु है, न्याय दर्शन में ईश्वर का प्रत्यय गुण और जगत में संबंध। उदयनाचार्य ने न्याय कुसुमांजलि में ईश्वर के स्वरूप तथा गुण के विषय में कहा है कि ईश्वर सत, चित और आनंद से पूर्ण है। उसमें अधर्म, मिथ्या ज्ञान तथा प्रमाद का अभाव है। वह धर्म ज्ञान समाधि से युक्त है। अपनी सृष्टि रचना में वह सर्वशक्तिमान है। वह सर्वज्ञ है। वह नित्य प्रज्ञावान है। ईश्वर इच्छा शक्ति से भी युक्त है। ईश्वर विशुद्ध अबाधित प्रतिभा तथा परमानंद का भंडार है। अगला बिंदु है, न्याय दर्शन में ईश्वर के गुणों का उल्लेख किया गया है। ईश्वर में 6 गुण हैं, इसलिए उन्हें षडैश्वर कहते हैं। ईश्वर में अखंड ऐश्वर्य अर्थात आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री ज्ञान एवं वैराग्य है। ईश्वर संसार का निमित्त कारण है, वह जीव आत्माओं के कर्मों का प्रयोजक कारण है। जीव परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार ही कार्य करता है। ईश्वर जीव के कर्मों का प्रयोजक करता है, धर्म व्यवस्थापक है, जीवों के कर्मों का फलदाता है, सुखों दुखों का निर्णायक है। ईश्वर जगत का सृष्टा है, वह सृष्टि संहारक भी है। जगत की रचना और संहार करना उसकी शक्ति की अभिव्यक्ति का एक रूप है। अगला बिंदु है, अद्वैत दर्शन में ईश्वर का स्वरूप, गुण तथा जगत से संबंध। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में निर्गुण ब्रह्म को ही पारमार्थिक दृष्टि से एकमेव सत्ता स्वीकार किया है। ईश्वर को केवल व्यवहारिक दृष्टि से सत्य माना जाता है। शंकर के दर्शन में ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण सर्वोच्च सत्ता है। शंकर के अनुसार ईश्वर सगुण ब्रह्म का नाम है। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापक है, स्वतंत्र तथा एक है। ईश्वर सबके भीतर या अंतर्यामी है। ईश्वर जगत की रचना करता है, जगत का पालन करता है तथा वही जगत का संहार भी करता है। माया ईश्वर की शक्ति है, उसी से ईश्वर जगत की रचना करता है। ईश्वर जगत का प्रथम कारण है, किंतु ईश्वर अकारण है। ईश्वर जगत का निमित्त तथा उपादान कारण दोनों है। यह जगत ईश्वर के स्वभाव का परिणाम है। ईश्वर बिना सृष्टि रचना के रह नहीं सकता। ईश्वर का एक सृष्टिकर्ता रूप है और सृष्टि लीला या खेल के रूप में है। शंकर का ईश्वर विश्व में व्याप्त भी है और विश्वातीत भी है। ईश्वर जगत में उसी तरह व्याप्त है जिस तरह दूध में उजलापन है। ईश्वर जगत में व्याप्त रहते हुए भी जगत की बुराइयां उसे प्रभावित नहीं करती। इसी तरह ईश्वर विश्वातीत भी है। अगला शीर्षक है, रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद में ईश्वर स्वरूप, गुण तथा जगत। रामानुज का ब्रह्म या ईश्वर पुरुषोत्तम है। वह अनंत गुणों से युक्त है, किंतु उसमें अशुभ गुण नहीं है। रामानुज का ब्रह्म सविशेष है, निर्विशेष नहीं है। ऐसा ब्रह्म ईश्वर ही है। पृष्ठ संख्या 165। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। रामानुज ने ब्रह्म को निर्गुण इसलिए कहा है कि वह प्रकृति के अशुभ गुणों से युक्त नहीं है। अतः ब्रह्म या ईश्वर नित्य, व्यापक, सूक्ष्म, अंतर्यामी, अक्षय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और कल्याण युक्त गुणों से संपन्न है। रामानुज मानते हैं कि ईश्वर या ब्रह्म, चित या जीव और अचित जगत तीन मूल तत्व हैं। तीनों एक दूसरे से भिन्न और शाश्वत हैं, किंतु तीनों स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र तो केवल ईश्वर है। चित और अचित ईश्वर के आश्रित और अंतर्गत है। रामानुज के अनुसार जीव, जगत और ब्रह्म में अपृथक स्थिति का संबंध है। अर्थात जीव और जगत या चित अचित दोनों ब्रह्म के अंश हैं, पर अंश और अंशी में आंतरिक संबंध है। बाह नहीं, चित और अचित उसके शरीर हैं। ईश्वर कर्मों के फल देता है और उपास्य देव है। वह सारे चित अचित जगत का नियामक है। चित और अचित उसकी शक्तियाँ अंश, आकार, विशेषण, प्रकार या शरीर हैं। दोनों में अपृथक सिद्धि, वह संबंध जो अलग न हो सके है। ब्रह्म अनेकों में एक है। ब्रह्म का स्वरूप अचिंत्य है। रामानुज के दर्शन में ब्रह्म या ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त कारण है। वही सबका आधार है। ईश्वर सबका अंतर्यामी भी है। ईश्वर जीव के कार्यों के अनुसार फल देता है। वह कर्माध्यक्ष है। ईश्वर भक्तों को शरण देता है। वह सबका स्वामी है। ईश्वर अनंत ज्ञान तथा आनंद वाला है। ईश्वर जीव तथा जड़ सबका अंतर्यामी है। ईश्वर उपासना से प्राप्त होता है। ईश्वर सृष्टिकर्ता, सबका पालन करता तथा संहार करता भी है। मध्य के दर्शन में ईश्वर स्वरूप गुण तथा जगत के विषय में कहा गया है कि ईश्वर स्वतंत्र सत्ता है। जीव जगत परतंत्र सत्ताएं मानी जाती हैं। ईश्वर पूर्ण सत्ता है। ईश्वर में अनंत उच्च कोट के आध्यात्मिक गुण हैं। मध्य ईश्वर को निर्गुण नहीं मानते। ईश्वर सच्चिदानंद है। ईश्वर में निम्नलिखित छह गुण हैं। पहला अनंत ज्ञान, दूसरा अनंत बल, तीसरा अनंत शक्ति, चौथा अनंत ऐश्वर्य, पांचवा अनंत वीर्य, छठवा अनंत यश। ईश्वर जगत का निमित्त और उपादान कारण है। ईश्वर ही कारण है उत्पत्ति का, पालन और विनाश का, नियमन का, विद्या बंधन और मुक्ति का भी कारण है। ईश्वर अनिर्वचनीय है, क्योंकि उसके पूर्ण रूप को ग्रहण नहीं किया जा सकता। ईश्वर ही ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान भी कहलाता है। ईश्वर अंतर्यामी है। वह सबका नियंता है। वह पुरुषोत्तम है। अगला शीर्षक है, ईश्वर के अन्य गुण हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान, पूर्ण सनातन, अति सूक्ष्म तथा अविनाशी है। ईश्वर प्राणों में निवास करता है, कार्यों की प्रेरणा देता है। उसकी प्राप्ति साधना से की जा सकती है। उसमें अचिंतनीय शक्तियाँ हैं। ईश्वर असंभव को संभव कर सकता है। ईश्वर निर्वय है, शरीर और ज्ञानेन्द्रियों से रहित है। ईश्वर प्रकृति की वशीभूत नहीं है। वह सभी जीवों और जगत में व्याप्त है तथा उन सबसे परे भी है। अगला शीर्षक है, प्लेटो। पाश्चात्य दार्शनिकों में प्लेटो ने ईश्वर को शुभ का प्रत्यय बतलाया है। ईश्वर विश्व का सृष्टा है। ईश्वर शुद्ध आत्मा है। वह अपूर्ण आत्माओं या जीवों का सृष्टा है। अगला है अरस्तु। अरस्तु के अनुसार ईश्वर अपरिवर्तनीय एवं अचल, परंतु विश्व की प्रक्रिया में गति देने वाला है। ईश्वर जगत का निमित्त और चरम कारण है। ईश्वर शुद्ध चिंतन रूप है। अरस्तु के अनुसार ईश्वर आकार मात्र है। उसमें पुद्गल का अंश नहीं होता। सारांश में शुद्ध आकार, अचल गतिदाता और परम कारण कहा गया है। पृष्ठ संख्या 166। अगला बिंदु है स्टोइक संप्रदाय। स्टोइकों ने माना कि ईश्वर और ब्रह्मांड में तादात्म्य है। यह ईश्वर सब कुछ की जानकारी रखता है, सबसे प्रेम रखता हुआ सबका कल्याण चाहता है। इनके अनुसार ईश्वर सार्वभौमिक बुद्धि है जो विश्व का नियमन करती है। प्रकृति का नियम इसी बुद्ध का ही नियम है। अगला बिंदु है प्लॉटिनस। प्लॉटिनस के अनुसार ईश्वर ऐसी शक्ति है जो सृजनशील और सक्रिय है। ईश्वर एकता, आकार और मूल तत्व है। वह सौंदर्य और बुद्धि का मूल होते हुए भी स्वयं न तो सुंदर है न चिंतनशील या बुद्धि रूप ही। ईश्वर श्रेय या शुभ का स्रोत है, परंतु स्वयं शुभ नहीं है। ईश्वर शांति और परम संतोष है। ईश्वर व्यक्तित्व रहित है। उसमें गुणों का आरोपण करना उसको सीमित करना है। अगला बिंदु है संत अगस्टाइन। अगस्टाइन के अनुसार विश्व में जो कुछ भी है ईश्वर में ही है और उसी पर निर्भर है। ईश्वर ही संसार का आदि है। ईश्वर से परे कुछ नहीं है। शुभत्व, न्याय तथा विवेक आदि गुण ईश्वर के आंतरिक सार तत्व हैं। ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा नित्य है। ये सभी गुण उसमें आंतरिक धर्म है। अगला बिंदु है संत एंसेलम। एंसेलम के अनुसार ईश्वर ज्ञान, सुख, न्याय और सत्य स्वरूप है। ईश्वर वर्णनातीत है। ईश्वर को द्रव्य इसलिए कहा जाता है कि इससे अच्छा शब्द मनुष्य की भाषा में नहीं। मानवता की रक्षा, जीवों को सुख प्रदान करने तथा पापों से उद्धार कराने के लिए ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। ईश्वर को ईसा के रूप में आना पड़ा था। अगला बिंदु है संत टॉमस। टॉमस के अनुसार ईश्वर विश्व का आदि कारण, पूर्णतम पदार्थ तथा विश्व प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य है। ईश्वर विश्व के अस्तित्व का आधार है। ईश्वर सत्य स्वरूप है। अगला बिंदु है डकार्त। डकार्त ईश्वर को द्रव्य कहते हैं। वह अनंत, नित्य, अमर, स्वतंत्र, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है। इनके अनुसार समस्त वस्तुएं जो हैं उनकी उत्पत्ति ईश्वर ने ही की है। अगला बिंदु है स्पिनोजा। स्पिनोजा के ईश्वर विषयक प्रत्यय के अनुसार ईश्वर द्रव्य है। वह पूर्ण स्वतंत्र है। वह स्वयं अपना कारण है। उसका कोई कारण नहीं है। वह जगत से परे नहीं है। स्पिनोजा सर्वेश्वरवाद को मानते हैं। वह जगत में व्याप्त हैं, इसीलिए ईश्वर को प्रकृति कहते हैं। ईश्वर अंतर्यामी है, सृजनात्मक शक्ति है। ईश्वर स्वतंत्र है, एक है, निरपेक्ष और अद्वितीय है। ईश्वर अनादि, अनंत तथा अपरिच्छिन्न है। उसको परिच्छिन्न या सीमित नहीं किया जा सकता। वह निराकार है। उसमें मानवीय गुणों का आरोपण नहीं किया जा सकता। वह जगत का सृष्टिकर्ता नहीं, वरन साक्षात सृष्टि ही है। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर सब कुछ और सब कुछ ईश्वर है। अगला बिंदु है लाइबनित्ज। ईश्वर अद्वितीय, एक, सार्वभौम एवं अनिवार्य है। उसमें स्वतंत्र किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। वह असीम, पूर्ण और अनंत है। ईश्वर में अनंत ज्ञान, शक्ति एवं शिवत्व है। अगला बिंदु है फिक्टे और सेलिंग। फिक्टे के अनुसार ईश्वर परम आत्मा है। ईश्वर और नैतिक नियम में भिन्नता नहीं है। परमात्मा सार्वभौम, नैतिक संकल्प और नैतिक नियम है। सेलिंग ने ईश्वर को निरपेक्ष ब्रह्म के रूप में माना है। वह अभेद स्वरूप है। इसी से आत्म और अनात्म सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। फिर ये सभी इसी निरपेक्ष में समाहित हो जाती हैं। पृष्ठ संख्या 167। अगला बिंदु है हेगल। ईश्वर का प्रत्यय हेगल के अनुसार निरपेक्ष है। वह परम सत्ता है। भेद में अभेद है। वह विश्व में व्याप्त भी है और विश्व से परे भी। वह अनंत, नित्य तथा आत्मचेतन है। अगला बिंदु है ब्रैडले। ब्रैडले के अनुसार ईश्वर और ब्रह्म एक दूसरे से भिन्न है। ईश्वर ब्रह्म का विवर्त है। ब्रैडले ईश्वर को तत्व पदार्थ नहीं मानते। कारण यह है कि ईश्वर उपास्य है। उसका संबंध उपासक से होता है। अतः संबंध के कारण तात्विकता का अभाव मानना पड़ता है। ब्रह्म परिवर्तन शून्य है। ब्रह्म के भीतर गति और परिवर्तन होते हैं, परंतु स्वयं ब्रह्म में परिवर्तन नहीं होता। अगला बिंदु है रॉयस। रॉयस ने ईश्वर और ब्रह्म में भेद नहीं किया है। ईश्वर वैयक्तिक गुणों से युक्त है। ईश्वर सर्वज्ञाता है। वह निरपेक्ष, आत्मचेतन, कृति एवं प्रेम स्वरूप है। अगला बिंदु है लाटजे। ईश्वर एक शक्ति है जो विश्व का अंतिम तत्व और आधार है। यह शक्ति तीन तीन रूपों में प्रत्यक्ष होती है। श्रेय के रूप में विश्व की विकसनशील वास्तविकता के रूप में और अपरिवर्तनीय नियम श्रृंखला के रूप में। ईश्वर अनेकता में एकता स्वरूप है। वह जीवों की सृष्टि करता है और उनको पवित्रता प्रदान करता है, क्योंकि उसमें अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और पवित्रता है। समकालीन भारतीय दार्शनिकों में श्री अरविंद एवं डॉक्टर राधाकृष्णन निर्गुण और सगुण ईश्वर में संगति बैठाने की चेष्टा करते हैं। फिर भी धर्म के क्षेत्र का ईश्वर दार्शनिकता की गहनता में इस प्रकार के चिंतन का विषय बन जाता है कि क्या ईश्वर का मानवीकरण होने पर वह परम सत्ता रह सकती है? क्या मानवीय गुणों से विभूषित ईश्वर ससीम नहीं हो जाता? इन प्रश्नों के संदर्भ में ईश्वर और निरपेक्ष पर विचार करना स्वाभाविक हो जाता है। धर्म दर्शन में ईश्वर और निरपेक्ष विचारणीय विषय हैं। हम यहाँ इस पर विचार कर सकते हैं। अगला शीर्षक है ईश्वर एवं निरपेक्ष या ब्रह्म, गॉड एंड एब्सोल्यूट। हम देख चुके हैं कि प्रारंभिक आदिम धर्मों में ईश्वर एक रहस्यमयी शक्ति के रूप में कल्पित किया गया था। उच्च धर्मों के विकास में भी ईश्वर को केवल मूल्यों का स्रोत ही नहीं वरन शक्ति के रूप में भी माना गया। ईश्वर और मनुष्य का संबंध केवल पिता पुत्र के रूप में नहीं बल्कि सृष्टि और सृष्टा के रूप में भी देखा गया। यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि ईश्वर एक शक्ति है और उसी ने जगत की सृष्टि की है तो क्या उनकी शक्ति किसी सत्ता अर्थात जड़ जगत से बाधित है अथवा उसी में संपूर्ण शक्ति समाहित है और उसी एक से ही अनेकता का प्रकाशन हुआ है। यहाँ धार्मिक व्यक्ति ईश्वर को ही सब कुछ मानता है, वही एक परम सत्ता भी है और नानात्व भी उसी का रूप है। वह विश्वव्यापी तथा विश्वातीत दोनों है, वह गुणों से युक्त तथा गुणातीत भी है, वही व्यवहारिक एवं पारमार्थिक सत्ता दोनों है। परंतु दार्शनिक सत्ता को दो रूपों में विभाजित करता है, ईश्वर व्यवहारिक सत्ता है और ब्रह्म या निरपेक्ष पारमार्थिक सत्ता। के इस विभेद के कारण ही कुछ चिंतक धर्म में ईश्वर को महत्व प्रदान करते हैं और ब्रह्म या निरपेक्ष को दर्शन में। इस दृष्टि से धर्म दर्शन में ईश्वर एवं निरपेक्ष एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय बन गए हैं। ब्रह्मवादी या निरपेक्षवादी निरपेक्ष या ब्रह्म को ही पारमार्थिक सत्ता मानते हैं, वह पूर्णतया अद्वैत है। इनके अनुसार पारमार्थिक सत्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब व्यवहारिक सत्य से आगे बढ़ेंगे। वे व्यवहारिक सत्य को प्रपंच या आभास मानते हैं। वास्तविक सत्ता तो निरपेक्ष है जो प्रपंचातीत है। पृष्ठ संख्या 168। अब धर्म की दृष्टि से ईश्वर और निरपेक्ष में से कौन अधिक संतोषप्रद है, इस पर विचार करने के पहले हमें निरपेक्षवादी विचारकों के मतों पर दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस संबंध में अद्वैतवादी अथवा सर्वेश्वरवादी सिद्धांत उल्लेखनीय है। शीर्षक है शंकर का अद्वैतवाद। शंकर अद्वैतवादी हैं। इनके अनुसार निरपेक्ष या ब्रह्म और ईश्वर में अंतर है। ईश्वर निरपेक्ष सत्ता का व्यवहारिक रूप है, ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक है और ईश्वर की व्यवहारिक। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से ईश्वर को स्वीकार किया जाता है, पर वास्तविक सत्ता तो ब्रह्म ही है। ईश्वर सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्चित आनंद स्वरूप है। वह निर्गुण अर्थात व्यक्तित्व के गुणों से रहित है। ब्रह्म नानात्व एवं विभेदों से परे है। माया अथवा अज्ञान के कारण ही ईश्वर जीव और जगत की प्रतीति होती है। ब्रह्म का वास्तविक रूप निर्गुण ब्रह्म है। ब्रह्म में गुणों का आरोपण करने का अर्थ है उसे सगुण बनाना, जो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। अज्ञान का नाश होने पर एकमात्र ब्रह्म ही दिखाई देता है, जो अद्वय निर्विकार गुणातीत अपरिवर्तनीय सच्चिदानंद एवं वास्तविक पारमार्थिक सत्ता है। अगला शीर्षक है स्पिनोजा का अद्वैतवाद। पाश्चात्य आधुनिक दार्शनिकों में स्पिनोजा की गणना महान निरपेक्षवादी चिंतकों में की जाती है। उनके सर्वेश्वरवाद की समता भारतीय दार्शनिक शंकर के ब्रह्मवाद से मिलती है। स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद न तो ईश्वर का बहिष्कार करता है और न ईश्वरवाद को ही महत्व देता है। स्पिनोजा की दृष्टि में ईश्वर का निरपेक्ष से तादात्म्य है। स्पिनोजा के अनुसार परम सत्ता द्रव्य है जो स्वतंत्र, अद्वैय, अनादि, अनंत एवं अपरिच्छिन्न है। उनके मत से ईश्वर, द्रव्य और प्रकृति एक ही सत्ता के तीन नाम कहे जा सकते हैं। डेकार्त ने जड़ और चेतन दो तत्वों को माना था। इनके अतिरिक्त उन्होंने ईश्वर को परम तत्व के रूप में स्वीकार किया था। ईश्वर निरपेक्ष है और जड़ तथा चेतन सापेक्ष, परंतु स्पिनोजा के अनुसार तो तत्व स्वतंत्र होने के कारण निरपेक्ष ही है। सारांश में स्पिनोजा ने अद्वैत की स्थापना की तथा चेतन और अचेतन दोनों को ही एक तत्व अर्थात ईश्वर के गुण के रूप में स्वीकार किया। साथ ही स्पिनोजा ने ईश्वर को निर्गुण ही कहा है। यदि वह सगुण होता तो स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्पिनोजा ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर स्पिनोजा के द्वारा दी गई गुण की परिभाषा से अस्पष्ट हो जाता है। गुण वह धर्म है जिन्हें बुद्धि तत्व का स्वरूप मानती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वास्तव में गुण तत्व में नहीं है, तत्व में उनकी प्रतीति मात्र होती है। स्पिनोजा यह भी कहते हैं कि तत्व तो एक ही है, गुण अनेक है। अनेक प्रकारों में गुण की अभिव्यक्ति होती है। सत्य तो यही है कि तत्व एक है, अनेकत्व भ्रम है। इस भ्रम का कारण हमारी सीमित बुद्धि है। विभेदों और सीमितता के परे जाने पर ही हमें एक तत्व का अनुभव होगा। हमें सत्ता का ज्ञान बुद्धि से नहीं हो सकता। बुद्धि के विकल्प गुण हैं जो अपरिच्छिन्न सत्ता को परिच्छिन्न बनाते हैं। स्पिनोजा की प्रसिद्ध युक्ति है कि प्रत्येक विशेषण एक प्रकार का निषेध है, अर्थात प्रत्येक प्रकार का सीमितकरण निषेध रूप में है। किसी वस्तु में गुणों का आरोपण करना उसे सीमित और परिच्छिन्न कर देना है। अगला शीर्षक है आलोचना। इस प्रकार स्पिनोजा का परम तत्व निर्गुण और अमूर्त है। उनका सिद्धांत अमूर्त एक तत्ववाद भी है और सर्वेश्वरवाद भी, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में और प्रकृति में एकत्व देखा है। पृष्ठ संख्या 169। इसलिए कुछ लोगों ने स्पिनोजा को नास्तिक भी कहा है। यदि प्रकृति पर जोर दिया जाए तो प्रकृति ही सब कुछ है, और यदि ईश्वर पर जोर दिया जाए तो ईश्वर की अव्यक्ति ही प्रकृति है। स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद यांत्रिकवाद का भी पोषण करता है, क्योंकि इसमें मनुष्य की स्वतंत्र संकल्प शक्ति का लोप दिखाई देता है। परंतु दूसरी ओर स्पिनोजा का निरपेक्ष सर्वोच्च अध्यात्मवादी धर्म रहस्यवाद का परम साध्य है। इस अर्थ में स्पिनोजा आध्यात्मिकता की उच्च कोटि में है, परंतु स्पिनोजा का अनेकात्मक जगत को भ्रम कहना उचित नहीं ज्ञात होता। अनुभवात्मक जगत को खरगोश की सिंह तो नहीं कहा जा सकता। फिर अनेकता को भ्रम कहने से परिवर्तन की व्याख्या नहीं हो सकती। यदि परिवर्तन नहीं तो प्रगत कैसे संभव है। अगला शीर्षक है, हेगल का निरपेक्ष विज्ञानवाद या ब्रह्मवाद। हेगल के दर्शन में अमूर्त एक तत्ववाद ने मूर्त एक तत्ववाद का रूप ले लिया। हेगल के अतिरिक्त ग्रीन, फिक्टे एवं ब्रैडले भी इसके प्रमुख समर्थकों में से हैं। इनके अनुसार अनेकता केवल भ्रम मात्र नहीं है, बल्कि अनेकता का एकता से अनिवार्य संबंध है। हेगल के अनुसार निरपेक्ष ही एकमात्र तत्व है, संपूर्ण विश्व इसी का परिणाम है। हेगल का निरपेक्ष निर्विशेष नहीं है और न तो विभेद रूप ही है, यह भेद विशिष्ट अभेद रूप है। दूसरे शब्दों में यह ऐसी एकता है जो अनेकता में अनुसृत है, निरपेक्ष अंशी है और जगत की समस्त वस्तुएं अंश के रूप में उसी की अव्यक्ति हैं। अंश अंशी पर आधारित है। हेगल के अनुसार ईश्वर परम मनस है और उसी में सब कुछ समाहित है और वह सब अंतर्यामी है। ईश्वर के संबंध में हेगल का विचार है कि ईश्वर विश्व की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है, सभी कुछ उसमें समाया है, उसके दायरे से बाहर कुछ भी नहीं है, ईश्वर हर वस्तु में है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि वह प्रत्येक वस्तु का योग मात्र है, वह जगत में व्याप्त भी है और उसके परे भी है। ईश्वर जगत में व्याप्त होकर उसका प्रेरक भी है और उससे परे होकर उसका नियंत्रण भी करता है। इस अर्थ में जगत उस अनंत आत्मा या ईश्वर का ब्रह्म रूप है। शांत आत्माएं ईश्वर के ही शांत रूप हैं, अतः ईश्वर के समान ही शांत आत्मा भी है। ईश्वर अपने आप में से जगत का विकास उन्हीं प्रकारों के अनुसार करता है जिनसे कि मानव मन उसे जानता है। विचार और तत्व के रूप में समानता है। यह विश्व ईश्वर की विचार प्रक्रिया का प्रकटीकरण है। इस विषय में हेगल की यह उक्ति विदित है कि जो बौद्धिक है वह वास्तविक है और जो कुछ वास्तविक है वह बौद्धिक है। विचार के नियम वास्तविकता के नियम हैं। विचार का प्रकटित रूप प्रकृति है, वह निरपेक्ष ही बाह्य रूप से प्रकट होता है, परंतु प्रकृति उसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसकी पूर्णतया अव्यक्ति मानवीय आत्मचेतना में होती है और अंत में कला, धर्म तथा दर्शन में। व्यक्ति और समाज क्रमशः आंतरिक और बाह्य मनस है। ईश्वर जो परम है इसमें प्रकट होता है। शीर्षक है आलोचना। हेगल की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने जगत को केवल भ्रम या आभास मात्र कहकर नहीं टाल दिया है, बल्कि बाह्य जगत, सीमित आत्मा एवं ईश्वर की वास्तविकता को स्वीकार किया है। वैसे हेगल परम आत्मा को ही इतना विशेष महत्व प्रदान करते हैं कि मानव स्वातंत्र का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। परंतु शांत आत्मा की वास्तविकता को स्वीकार करने पर यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य की स्वतंत्रता को स्थान है, किंतु वह स्वतंत्रता से सीमित है। हेगल के निरपेक्ष विज्ञानवाद में सबसे बड़ा दोष यही देखने को मिलता है कि इन्होंने बुद्धि को सर्वप्रधान मान लिया है। बुद्धि से ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है, यह समझ में आने योग्य बात नहीं है, क्योंकि बुद्धि स्वभावतः विभेदात्मक है, जो अभेदात्मक सत्य को कैसे ग्रहण कर सकती है। ब्रैडले ने इसका खंडन किया है और अनुभूति द्वारा सत्य की प्राप्ति पर बल दिया है। पृष्ठ संख्या 170। अगला शीर्षक है ब्रैडले का अनुभव निरपेक्ष। ब्रैडले ने चरम तत्व को परब्रह्म कहा है, यह चरम तत्व अनुभव रूप है। ब्रैडले ने बर्कले की भांति यह माना है कि अनुभव के अतिरिक्त किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। इस संदर्भ में ब्रैडले अपनी पुस्तक सत एवं आभास में कहते हैं कि कोई भी सत्तावान वस्तु हो, कोई भी वस्तु लाओ जिसे वास्तविक कहा जा सके, फिर यह निर्णय करो कि वह अनुभव रूप है या नहीं। इनके अनुसार सभी कुछ अनुभव मूलक है, चरम तत्व भी अनुभव रूप है, क्योंकि हम वस्तुओं को उनके देखे जाने या अनुभव किए जाने से अलग करते हैं, तो उनके विषय में कुछ व्यक्त ही नहीं कर सकते। साक्षात अनुभूति से ही हमें किसी समष्टि का ज्ञान हो सकता है। परब्रह्म अनुभव रूप इसीलिए है कि उसको केवल चिंतन या बुद्धि द्वारा नहीं समझ सकते। कारण यह है कि बुद्धि या चिंतन विश्लेषण युक्त है, अतः निरपेक्ष या परब्रह्म का ज्ञान अनुभव रूप ही है। ब्रैडले सत के अतिरिक्त पदार्थों को आभास की संज्ञा देते हैं। जितने भी सीमित पदार्थ हैं वे सब परब्रह्म के विवर्त या आभास हैं, परंतु इन सब में तत्व पदार्थ ही भासित होता है। परंतु आभास को परब्रह्म नहीं कहा जा सकता। परब्रह्म इनका अधिष्ठान होकर भी उनसे ऊपर और परे भी है। ब्रैडले के अनुसार हमारा देखना, विचार करना, इच्छा करना या हमारी दुख सुख की भावनाएं, यह सभी ब्रह्म के विवर्त या आभास हैं। यहाँ तक कि ब्रैडले ने हेगेल की तरह बुद्धि या चिंतन का विश्व का मूल तत्व न बतलाकर विवर्त ही कहा है। अगला शीर्षक है पर ब्रह्म और ईश्वर। ब्रैडले ने पर ब्रह्म को ईश्वर से भिन्न माना है। शंकर के अद्वैत वेदांत की तरह ब्रैडले ने भी ईश्वर को ब्रह्म का विवर्त कहा है। ईश्वर तत्व पदार्थ नहीं है, ऐसा इसलिए कि ईश्वर में उपासक उपास्य का संबंध है। ब्रैडले के अनुसार जहाँ संबंध का भान होता है वहाँ वास्तविकता का अभाव होता है, अतः ईश्वर तत्व पदार्थ नहीं है, पर ब्रह्म या निरपेक्ष ही तत्व है। ब्रैडले के शब्दों में यदि हम ईश्वर का तादात्म्य निरपेक्ष से करते हैं तो वह धर्म का ईश्वर नहीं है। यदि इन दोनों को अलग कर देते हैं तो ईश्वर उस पूर्ण सत्ता का एक अपूर्ण तत्व रह जाता है। हम कह सकते हैं कि वह ईश्वर ईश्वर नहीं हो सकता जब तक कि वह सब कुछ न हो, पूर्ण न हो, और फिर वह ईश्वर जो सर्वस्व है, धर्म का ईश्वर नहीं रह जाता। ईश्वर है, परंतु वह उस निरपेक्ष का एक पहलू है। इसका अर्थ है कि उस पूर्ण सत्ता का प्रतीति या आभास मात्र है। अगला शीर्षक है आलोचनात्मक दृष्टि। शंकर और ब्रैडले के परब्रह्म तथा ईश्वर संबंधी विचारों में दार्शनिक दृष्टि से जो भी कमियां हैं, वह अपनी जगह पर तो हैं ही। धर्म की दृष्टि से इन दोनों के ही परम सत्ता संबंधी विचार असंतोषजनक हैं। ब्रह्म जो भेद से परे की सत्ता है, उसके उपास्य होने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ईश्वर धर्म में अनिवार्य तत्व है, परंतु शंकर और ब्रैडले दोनों ही ईश्वर को परम सत्ता नहीं मानते। धर्म ऐसी परम सत्ता की पूजा करके संतुष्ट नहीं होता जो कि बिल्कुल ही सर्वोच्च नहीं है। ईश्वर तो परम सर्वोच्च सत्ता का आभास या विवर्त मात्र है। ब्रैडले द्वारा प्रतिपादित ईश्वर की सत्ता को न तो वास्तविक रूप में ही और न तो आभास रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। क्या विश्व में कहीं भी ऐसे ईश्वर की वास्तविक सत्ता को कल्पित किया जा सकता है जो हमारे लिए आभास मात्र हो? ब्रैडले ने जिस प्रकार सत्ता के विषय में क्रमिक रूप में श्रेणी का सिद्धांत अपनाया है, उस आधार पे वे उपयुक्त प्रश्न का उत्तर न तो हाँ में और न तो नहीं में ही देते हैं। शंकर द्वारा ब्रह्म को नितांत भेद शून्य चैतन्य मानना भी अनुचित है। पृष्ठ संख्या 171। स्पिनोजा का अद्वैत शंकर की तरह ही अनेकता को भ्रम कहकर ठुकरा देता है। अतः निरपेक्ष की अखंडता धर्म की दृष्टि से निरर्थक प्रतीत होती है। कुछ सीमा तक हमें हेगल तथा रामानुजाचार्य का मत तर्क संगत लगता है, जिन्होंने ब्रह्म को भेदों में अभेद माना है, अनेकात्मक जगत में एकत्व को देखा है और अंशों के अवयवों से निर्मित एक अनंत अंशी को स्वीकार किया है। शंकर व ब्रैडले की भांति इन्होंने जगत, जीवात्मा और ईश्वर को आभास नहीं कहा है। पारमार्थिक दृष्टि से जीव, जगत और ईश्वर को सत्य कह सकते हैं। संपूर्ण विश्व ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। जीव ईश्वर के ही अंश हैं तथा उनको आंशिक रूप में स्वतंत्रता भी मिली हुई है। रॉयस का ईश्वर भी अनंत ज्ञान, प्रेम, शक्ति और कृति से संबंधित आत्मचेतन अनंत सत्ता है। प्रोफेसर एडवर्ड ने ठीक ही कहा है कि अद्वैतवादियों को अपने जगत की एकता संबंधी सिद्धांत में इस प्रकार संशोधन करना चाहिए कि धर्म जगत में मानव व्यक्तित्व के अधिकारों, मूल्यों और उद्देश्य पूर्णता की रक्षा हो सके। सत्ता को केवल आध्यात्मिक मान लेना ही धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है और न ईश्वर का ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना ही पर्याप्त है। यदि सत्ता अचल और आत्मपूर्ण मात्र है और अपूर्ण जीवों से गतिशील रूप में संबंध नहीं स्थापित करती, तो मानव जीवन में धर्म का कोई महत्व नहीं रह जाता। धार्मिक चेतना की दृष्टि से एक ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है जो विश्व के समस्त क्रियाकलापों में सक्रिय हो और साथ ही अपने प्रत्येक उद्देश्य पूर्ण कार्य में अपूर्ण मानव के स्वेच्छापूर्ण सहयोग को प्रोत्साहित करे तथा उसका स्वागत करे। धार्मिकता की दृष्टि से ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर की आवश्यकता नहीं है कि जिसकी संकल्प शक्ति के आगे विश्व में किसी अन्य संकल्प को कोई स्थान ही न मिले। यह भी सच है कि ईश्वर का मानव से वैसा ही संबंध नहीं है जैसा कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से होता है, और न ऐसा समझना ठीक ही होगा कि ईश्वर किसी श्रृंखला में सबसे बड़ी और मजबूत कड़ी मात्र है। यदि हम ईश्वर को इतना ही मानते हैं तो उसका ईश्वरत्व समाप्त हो जाता है, जो धर्म और धार्मिक अनुभूतियों के विरुद्ध हो जाएगा। वास्तविक दृष्टि से वह अपने ही प्रकार की विशिष्ट सत्ता है। वह समस्त जीवन और अन्य सत्ताओं का आदि स्रोत और आश्रयदाता है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से ईश्वर का सृष्टिकर्ता होना आवश्यक है। ईश्वर जगत की रचना करके अपने को जगत को सौंप देता है और जगत पूर्णतया ईश्वर पर निर्भर करता है। इस प्रकार ईश्वर को हम यह मानते हैं कि वह ऐसा अच्छा स्रोत है जिससे ही कभी जीव और जगत उत्पन्न हुआ है और जिसमें ही हम जीवित हैं, गतिमान हैं और अपनी सत्ता बनाए हुए हैं। वह परम सत्ता जगत में व्याप्त है। यदि उसका तादात्म्य नहीं है, अर्थात इनमें रहते हुए भी वह मात्र यही नहीं है, वरन कुछ और भी है, वह सभी शक्तियों और स्रोतों का स्रोत है। इतना ही नहीं, वह सत्ता उन सभी मूल्यों और आदर्शों का स्रोत है जो चिरंतन है और जो मानव प्रगति के अंतिम लक्ष्य हैं। पृष्ठ संख्या 172, शीर्षक है निष्कर्ष। क्या ईश्वर एवं निरपेक्ष या ब्रह्म अभिन्न है? इसका उत्तर दो रूपों में दिया जा सकता है। प्रथम, यदि निरपेक्ष का अर्थ सत्ता का योग है, तब तो ईश्वर और निरपेक्ष अभिन्न है, क्योंकि यहाँ बहुत सी वास्तविक घटनाएं और सत्ताएं हैं जो दैवी प्रकृति को अव्यक्त नहीं करती। यहाँ ऐसे कार्य और घटनाएं हैं जो सर्वोच्च सत्ता के संकल्प को न तो प्रकट ही करती हैं और न उसके उद्देश्य से उनका कोई सामंजस्य ही है। इसलिए ईश्वर का तादात्म्य या अभेद वस्तुओं को समष्ट के साथ, जैसा कि निरपेक्ष को बताया गया है, नहीं किया जा सकता। दूसरा है, यदि निरपेक्ष की परिभाषा सर्वोच्च सत्ता के रूप में की जाती है, अर्थात वह सत्ता जो आदि है, सर्वकालिक है, जगत को धारण करने की एक शक्ति है और सभी वस्तुओं का अंतिम लक्ष्य है, तब तो ईश्वर एक निरपेक्ष सत्ता है। ऐसी सर्वोच्च सत्ता से कम की उपासना ईश्वर के रूप में नहीं की जा सकती। इस प्रकार ईश्वर विश्व की सर्वोच्च सत्ता है, परंतु उसे निरपेक्ष कहना धोखा देना है, क्योंकि यह एक अस्पष्ट शब्द है। डीएम एडवर्ड के शब्दों में ईश्वर कुछ अद्वैतवादी दार्शनिकों का वह क्षोभ रहित शांत और अनासक्त निरपेक्ष नहीं है जो जगत की विपत्तियों, कष्टों, शुभ और अशुभ से परे रहने वाला है। वास्तव में वह तो हमारे बीच रहने वाला ईश्वर है, जिसका समय और इतिहास के प्रवाह के साथ आवश्यक संबंध है। वह तो अशुभ के विरोध में शुभ की प्राप्ति के लिए लड़ाई करता है, हमारी मुक्ति का कैप्टन है। वह जगत के पापों के कारण कष्ट उठाता है, उसका कष्ट मुक्तिदायक है। वह जगत का वास्तविक मुक्तिदाता है। ईश्वर प्रेम स्वरूप है। प्रेम में प्रेम किया जाने वाला और प्रेम दोनों का भाव है। ऐसे ईश्वर से ही एक आध्यात्मिक जगत और समाज की स्थापना संभव है। ऐसा ईश्वर उस निरपेक्ष से श्रेष्ठ है, जिसकी कल्पना कुछ अद्वैतवादी आत्मपूर्ण सत्ता की एकता के रूप में करते हैं। अध्याय 9 समाप्त।